पिछले पाठ में हम उच्चरित प्रतिध्वंसी की बात कर रहे थे। आपने समझ लिया होगा कि उच्चारण प्रथम क्षण में होता है, द्वितीय क्षण में वर्ण की स्थिति रहती है, तृतीय क्षण में उसका नाश हो जाता है। अच्छा, ये जो नाश होता है ना, वो क्रमिक नाश होता है, माने जिस क्रम से वर्ण का उच्चारण होता है उसी क्रम से जो है उसका नाश भी होगा। अब जैसे राम कहेंगे तो पहले र का उच्चारण हुआ तो सबसे पहले र का उच्चारण हुआ इसलिए र का ही पहले नाश होगा, फिर र आ रा आ का उच्चारण होगा तो र के नाश होने के बाद आ का नाश होगा, फिर म का नाश, इस तरह से क्रमिक नाश होता है। चलिए, अब ये दोनों बातें हम समझ चुके हैं कि वर्ण जो है उसका क्रमिक नाश होता है और वह उच्चरित प्रतिध्वंसी होता है। अब बताइए आप, जैसे गायों का समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, पक्षियों का समूह होता है, उस तरह से वर्णों का समूह हो सकता है क्या? नहीं संभव है ना, क्योंकि वो गायें तो जो है तृतीय क्षण में नाश होने वाली नहीं है, पक्षी तृतीय क्षण में नष्ट होने वाले नहीं है, लेकिन वर्ण जो है वो तृतीय क्षण में नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनका समूह जो है गायों के समूह और पक्षियों के समूह की तरह समूह नहीं माना जा सकता, इसीलिए इन्होंने समूह शब्द की व्याख्या की एक ज्ञान विषयी भाव समूह कि एक ज्ञान का विषय होना ही जो है वर्णों का वह वर्ण समूह कहलाता है। और एक ज्ञान का विषय तो हो सकता है, क्योंकि जो नष्ट हो चुका वह भी ज्ञान का विषय तो हो ही सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी गुजर गए, वो नष्ट हो गए, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय दादाजी तो हो सकते हैं। कहते हैं ना, हमारे दादाजी ऐसा कहते थे या हमारे दादाजी ऐसे थे, तो वो ज्ञान के विषय दादाजी हुए ना, तो जो नष्ट होता है वह भी ज्ञान का विषय हो सकता है। तो वर्ण भी भले नष्ट हो जाए लेकिन वह ज्ञान का विषय बन सकता है, और एक साथ कई सारे वर्ण जो हैं ज्ञान के विषय बन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर समूह की व्याख्या की एक ज्ञान विषयी भाव समूह। क्लियर हुआ? अब ग्रंथ की पंक्ति को देखते हैं, एवं च माने इस तरह से समूह की अगर व्याख्या करते हैं तो वर्णानाम क्रमवताम आसुतर विनाशित्वेन, वर्ण जो होते हैं वो क्रमिक उच्चारित होते हैं और क्रमिक ही जो है उसका विनाश भी होता है, और क्रमवताम क्रमवताम माने क्रमिक वर्णों का, और आसुतर आसुतर माने बहुत ही जल्दी, आसु माने शीघ्र और उसमें तरप प्रत्यय लगाया है माने अत्यंत शीघ्र, तो क्रमिकतया और अत्यंत शीघ्र जो है वर्ण में क्या क्या होता है, विनाशित्व रहता है, अर्थात वर्ण जो है विनाशी हो जाता है, वर्णों का नाश हो जाता है। इसलिए एकदा अनेक वर्ण अनुभव असंभवात, इसीलिए चूंकि वर्ण जो है वो क्रमिक आसुतर विनाशी होते हैं, इसीलिए एकदा माने एक समय में अनेक वर्ण का अनुभव होना जो है, अनेक वर्ण का अनुभव होना माने अनेक वर्णों को का सुनाई देना जो है एक साथ असंभवात, असंभव है। तो असंभव है, फिर क्या होगा कि पूर्व पूर्व वर्णान अनुभूय, इसलिए क्या होता है कि पूर्व पूर्व वर्ण का अनुभव करते हैं। पूर्व पूर्व वर्ण का अनुभव करने का मतलब हुआ कि जिस क्रम से वर्णों का उच्चारण हुआ उस क्रम से जो है ना हमने वर्णों का अनुभव किया, माने वर्णों को सुना और सुनते सुनते चले गए, फिर अंत्य वर्ण श्रवण काले, आ जब लास्ट वाला जो वर्ण है वाक्य का या पद का उसका जब हमने श्रवण किया, उस श्रवण के काल में पूर्व पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहकृते न, अब हुआ क्या कि हमने पहले एक वर्ण को सुना, वो नष्ट हुआ, नष्ट हुआ लेकिन उसका संस्कार जो है ना मेरे मन में बैठ गया, फिर हमने दूसरा वर्ण सुना, वह वर्ण भी नष्ट हुआ लेकिन उसका संस्कार मेरे मन में बैठ गया, फिर तीसरा सुना, वह भी नष्ट हुआ लेकिन सुनने के कारण उसका भी संस्कार जो है मेरे मन में बैठ गया। इस तरह से पूर्व पूर्व वर्ण जितने भी उच्चारित होते गए, जितने भी सुनाई पड़ते गए, जितने भी नष्ट होते चले गए, सबका जो है ना पूर्व पूर्व वर्णों का संस्कार जो है अंदर में विद्यमान रहा, और उस संस्कार की सहायता से सहकृते न माने सहायता से अंत्य वर्ण संबंधे न, जब लास्ट वाला वर्ण हमने सुना तो उस संस्कार की सहायता से अंत्य वर्ण का जब संबंध जुड़ा तो उस संबंध से पद व्युत्पादन समय ग्रह अनुग्रहीतेन सोत्रेन, ये जो पद व्युत्पादन समय ग्रह अनुग्रहीतेन है इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसको अभी छोड़ दीजिए। तो अंत्य वर्ण संबंधेन स्रोत्रेन, इसको ले लीजिए। स्रोत्रेन माने स्रोत्र माने कान कर्ण इंद्रिय। तो अंत्य वर्ण के साथ जब संबंध होता है किसका, स्रोत्रेन्द्रिय का, तो एकदा एव एक ही समय में सत असत अनेक वर्ण अवगाहिनी। सत माने जो विद्यमान है, कौन विद्यमान है, लास्ट वाला वर्ण जो है, अंत्य वर्ण जो है वह सत है, और असत कौन है, पूर्व पूर्व वर्ण जो था वो सब असत है, माने वो सब नष्ट हो चुका है। तो सत वर्ण और असत वर्ण जितने भी अनेक वर्ण हैं उनका अवगाहिनी, उनका अवगाहन करने वाला, अवगाहन करने वाले, करने वाला मतलब उनको विषय बनाने वाला, पद प्रतीति ही, प्रतीति माने ज्ञान, पद ज्ञान जो है वह जन्यते माने उत्पद्यते, वह जो पद ज्ञान है वह उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, तो फिर से एक बार प्रक्रिया को, प्रोसेस को समझिए कि ऐसे तो वर्ण जो होते हैं वो क्रमिक आसुतर विनाशी होते हैं, और इसलिए उसका जो है एक ही समय में सारे वर्णों का अनुभव असंभव है, सारे वर्णों का सुनाई देना असंभव है। इसलिए क्या होता, तो फिर कैसे हुआ जो है एक ज्ञान का विषय बनेगा, तो ऐसे बनता है कि पूर्व पूर्व वर्णों का हम अनुभव करते हैं माने श्रवण करते हैं, और श्रवण करने के समय में जो है उसका संस्कार हमारे अंदर बैठ जाता है। फिर जब हम अंतिम वर्ण का श्रवण करते हैं, अंतिम वर्ण के का संबंध जो है हमारे श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जब होता है, तो उस समय में संस्कार के द्वारा जो है ना पूर्व पूर्व वर्ण का मतलब आ जाते हैं, और लास्ट वाला जो वर्ण है वह तो साक्षात उस समय में श्रोत्रेंद्रिय में विद्यमान ही है, साक्षात संबंध उससे रहता है, वो साक्षात संबंध यहाँ पर होगा समवाय संबंध। तो समवाय संबंध से जो है ना अंतिम वर्ण रहेगा श्रोत्रेंद्रिय में, और संस्कार के द्वारा जो है पूर्व पूर्व वर्ण रहेंगे श्रोत्रेंद्रिय में। इस तरह से एक ही श्रोत्रेंद्रिय में संस्कार के द्वारा सारे पूर्व वर्ण रह गए, और समवाय संबंध के द्वारा अंतिम वर्ण रह गया। तो एक देव सत सत अनेक वर्ण अवगाहिनी पद प्रतीति जन्यते, तो एक ही समय में सत और असत अनेक वर्णों का विषय, अनेक वर्णों को विषय बनाने वाला जो पद ज्ञान है वह पद ज्ञान जन्यते माने उत्पद्यते, पद ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसमें एक उदाहरण भी इन्होंने प्रस्तुत किया कि कहा कि सहकारी दार्ढ्यात प्रत्यभिज्ञावत, क्या कि प्रत्यभिज्ञा की तरह यहाँ पर पद की प्रतीति होती है, ये प्रत्यभिज्ञा की तरह होती है। ये प्रत्यभिज्ञा क्या है, तो प्रतिभिज्ञा में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है आपको परसों मिला था कहीं पर, और वही व्यक्ति जो है आज आपको दिखाई दिया, तो आज जब वो दिखाई दिया तो क्या हुआ, आपको याद आया, आपको स्मरण आया, ओहो ये तो परसों जो है ना वहाँ पर दिखाई पड़ा था, आज जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर आपके मन में एक ज्ञान होता है कि सोयम पुरुषः, वही यह व्यक्ति है, सोयम देवदत्तः, वही यह देवदत्त है जो परसों मिला था, स एवायम घटः, वही ये घड़ा है जिस घड़े में हमने कल पानी पिया था। तो इस तरह से जो जिसको आपने पहले अनुभव किया हुआ है और फिर दोबारा जब उसको देखते हैं, तो उस समय में जैसे स एव अयम घटः, स एव अयम देवदत्तः, इस तरह से जो ज्ञान होता है इसी ज्ञान को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। फिर से सुन लीजिए, जिसको पहले आप अनुभव कर चुके हैं उस वस्तु को अगर दोबारा जब अनुभव करते हैं, दोबारा जब देखते हैं या सुनते हैं या जानते हैं, तो उस समय में जो आपको ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होगा कि स एव अयम, इस तरह का जो ज्ञान है उसी ज्ञान का नाम है प्रत्यभिज्ञा। अब ये जो प्रत्यभिज्ञा होती है इसमें भी सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस क्या है कि आपको परसों देवदत्त मिला, परसों देवदत्त मिला, आपने देवदत्त को पहचाना, पहचानने के बाद देवदत्त से जब आप बिछुड़े तो वो देवदत्त वाला ज्ञान जो है वहीं पर नष्ट हो गया। लेकिन नष्ट तो हुआ लेकिन देवदत्त वाला संस्कार आपके अंदर जो है स्थित हो गया। और फिर जब आज आपने देवदत्त को देखा तो देवदत्त को देखते ही क्या हुआ कि इस समय में देवदत्त को आप देख रहे हैं तो साक्षात जो है इंद्रिय से उसका ज्ञान हो रहा है और आपको स्मरण होता है परसों वाले देवदत्त का, वह जो संस्कार बैठा हुआ है, तो संस्कार के द्वारा परसों वाला देवदत्त का आपको ज्ञान हो रहा है और साक्षात जो है आपको अभी वर्तमान में इस देवदत्त का ज्ञान हो रहा है, तो सह और अयम का ज्ञान हो रहा है। सह का ज्ञान होता है संस्कार के द्वारा, अयम का ज्ञान होता है साक्षात इंद्रिय के द्वारा। तो जैसे प्रत्यभिज्ञा होती है संस्कार के द्वारा और साक्षात संबंध के द्वारा, उसी तरह से वर्णों का जो समूह होता है, पद का जो ज्ञान होता है, उसमें भी ये दोनों चीजें होती हैं। संस्कार के द्वारा पूर्व वर्णों का ज्ञान होता है और साक्षात संबंध के द्वारा, साक्षात इंद्रिय संबंध के द्वारा अंतिम वर्ण का ज्ञान होता है। इसीलिए इन्होंने उदाहरण दिया कि प्रत्यभिज्ञावत, प्रत्यभिज्ञा की तरह जो है पद की प्रतीति होती है, पद का ज्ञान होता है। इसमें इसके पहले लिखा सहकारी दार्ढ्यात्, सहकारी जो है यहाँ पर सहकारी माने सहयोग करने वाला जो कारण है वह कौन है, प्रतिभिज्ञा में संस्कार है तो संस्कार ही वहाँ पर सहकारी। अगर मान लीजिए परसों किसी से मिले और उसको भयंकर तरह से भूल गए, बिल्कुल याद ही नहीं है, तो फिर उसको अगर आज आप देखते भी हैं तो आपको में प्रतिभिज्ञा नहीं होगी। प्रतिभिज्ञा होने के लिए क्या होना चाहिए, संस्कार को दृढ़ होना चाहिए, संस्कार को मजबूत होना चाहिए। मजबूत अगर संस्कार रहेगा तो तभी जो है आपको प्रतिभिज्ञा हो पाएगी। इसी तरह से जब आप बहुत ही ध्यान से पद को सुनेंगे, शब्द को सुनेंगे, तभी जो है आपको एक साथ जो है सारे वर्णों का जो है समूह का ज्ञान हो पाएगा। अगर बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे तो सहकारी दार्ढ्य नहीं होगा, संस्कार जो है सहकारी कारण, उसमें दार्ढ्य नहीं आएगा, वो दृढ़ नहीं कहलाएगा और वो दृढ़ संस्कार के अभाव में फिर आपको जो है पद ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने अनुभव किया होगा कई बार कि आप सुनते तो रहते हैं लेकिन समझते नहीं रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सहकारी संस्कार जो है वह दृढ़ नहीं रहता है। तो इस तरह से दृढ़ सहकारी संस्कार के कारण जैसे प्रत्यभिज्ञा होती है, उसी तरह से दृढ़ पुरुपुरु वर्ण का के संस्कार के कारण जो है साक्षात संबंध जब होता है, समवाय संबंध अंतिम वर्ण का, तो उस समय में पद की प्रतीति होती है। इस तरह से पद की प्रतीति नष्ट और बिना नष्ट वाला, सत और असत दोनों टाइप के वर्णों का एक साथ एक काल में जो है जो अनुभव होता है वो कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस जो है इन्होंने यहाँ पर बताया। अब मैंने एक शब्द को छोड़ दिया था बीच में, कहा था कि इसको हम बाद में बताएंगे, तो उस शब्द को समझ लीजिए वो क्या है। इसमें जो है ना स्रोत्रेण जो है उसका यह विशेषण है, पद व्युत्पादन समय ग्रह अनुगृहीते न स्रोत्रेण, स्रोत्र कैसा होना चाहिए उसको, ऐसा होना चाहिए कैसा, तो देखिए पद यहाँ पर जो है ना, पद कौन सा है, ये जो है ना वर्ण समूह पदम, ये जो लक्षण कहा गया वर्ण समूह को पद बताया गया, ये वाला पद लेना, इस पद का जो व्युत्पादन किया गया, व्युत्पादन किया गया मतलब पद का जो परिचय दिया गया, तो पद का परिचय क्या दिया गया कि वर्ण समूह पदम, यही है पद व्युत्पादन। पद की व्युत्पत्ति जिससे हो, पद का ज्ञान जिससे हो, उस ज्ञान को हम कहेंगे पद व्युत्पादन। तो पद व्युत्पादन यहाँ पर क्या है, वर्ण समूह पदम, ये हो गया पद का व्युत्पादन माने पद का ज्ञान कराने वाला ज्ञान, ठीक है। और आगे चलिए पद व्युत्पादन समय, ये समय जो है, इस समय का अर्थ काल नहीं लेना है, इस समय का अर्थ है संकेत। ये संकेत क्या, संकेत का भी अर्थ जो है ना आप लोग जो समझ, वो संकेत कर रहा है उधर चलने के लिए, वो संकेत कर रहा है ये काम करने के लिए, वो वाला संकेत नहीं। यहाँ संकेत का तात्पर्य ये है कि अस्य शब्दस्य अयम अर्थः, ये जो डिक्शनरी बताती है, शब्दकोश जो ये बताता है, या गुरुजी बताते हैं कि अस्य शब्दस्य अयम अर्थ है, ये जो बताना है ना, इसी को समय कहा गया है, इसी को शास्त्र की भाषा में समय कहते हैं, अथवा संकेत कहते हैं, अथवा शक्ति भी कहते हैं। तो यहाँ जो किसको बताया गया, पद को बताया गया, पद का क्या बताया गया, अर्थ बताया गया। तो पद का अर्थ क्या है, वर्ण समूह जो है अर्थ है, और शब्द कौन है, पद है। तो यहाँ जो पद व्युत्पादन का समय है, उस समय का स्वरूप क्या है, यही है वर्ण समूह पदम। ये जो है पद व्युत्पादन का समय है, अर्थात पद व्युत्पादन करने का संकेत है। जैसे पाणिनी ने वृद्धि पद का संकेत किया है, वृद्धि पद का समय किया है, क्या वृद्धि ही आदैच। गुण पद का समय किया है, क्या अदेंग गुणः। समय किया माने वृद्धि पद का संकेत किया है, गुण पद का संकेत किया है, क्या संकेत किया है कि अस्य वृद्धि पदस्य अयम अर्थो बोध्यः, अस्य गुण पदस्य अयम अर्थो बोध्यः। तो अस्य पदस्य अयम अर्थो बोध्यः, ये जो कहा जाता है इसी का नाम है समय। क्लियर। इसका जो ग्रह है, ग्रह का शास्त्र में ज्ञान अर्थ लिया जाता है, ग्रह धातु का अर्थ जो है ना ज्ञान। तो समय ग्रह मतलब समय का अर्थ हो गया संकेत, ग्रह का अर्थ हो गया ज्ञान। तो समय ग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा, संकेत ज्ञान। तो चलिए फिर से चलते हैं, पद व्युत्पादन समय ग्रह माने पद को बताने के लिए, व्युत्पादन के लिए माने बताने के लिए जो समय ग्रह है माने संकेत का ज्ञान है। क्या है संकेत का ज्ञान, कि वर्ण समूह पदम इति ज्ञानम, ये जो है इसी का नाम है यहाँ पर पद व्युत्पादन समय ग्रह, अथवा पद को बताने के लिए संकेत का ज्ञान। ऐसा जो संकेत का ज्ञान है उससे अनुग्रहीतेन श्रोत्रेन, उसके द्वारा अनुग्रहीत जो श्रोत्र है, उस संकेत ज्ञान को समझने वाला जो श्रोत्रेंद्रिय है, या श्रोत्रेंद्रिय का ये विशेषण नहीं है, इसको अलग से ही रखते हैं, विशेषण मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करिए अनुग्रहीतेन का अर्थ ले लीजिए सहायता से, तो अब सहायता से या द्वारा, तो अब क्या होगा कि पद व्युत्पादन समय ग्रह द्वारा, ऐसा कर लीजिए सबसे बेस्ट होगा, कि पद के व्युत्पादन के लिए, पद को बताने के लिए जो समय ग्रह है, संकेत का ज्ञान है, उस संकेत ज्ञान के द्वारा। ठीक है। तो ये द्वारा का काम करता है संकेत का ज्ञान, ये तात्पर्य यहाँ पर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे, लेकिन रिकॉर्डिंग का समय हो रहा है, तो फिर अगले पाठ में हम पढ़ेंगे।